परम पूज्य महंत श्री के चरणों में साष्टांग प्रणाम अर्पित करते हुए 18 पुराणों में पद्म पुराण के कथा के संक्षिप्त प्रक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालु कथा प्रेमी भगवत जन का हार्दिक आभार, क्योंकि कथा वक्ता के अपेक्षा श्रोता ज्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि जो वक्ता है वह श्रोता के प्रति ही वक्ता है। जब तक वक्ता तब बनेगा जब श्रोता रहेगा, श्रोता न हो तो वह वक्ता किसके लिए, छात्र न हो तो गुरु क्या काम करेगा, गुरु न हो शिष्य क्या काम करेगा। तो दोनों का जो एक परस्पर कड़ी है वह जब तक नहीं जुटती है तब तक दोनों अधूरे ही रहते हैं। तो दोनों को दोनों की अपेक्षा है और दोनों का संगम का यह धाम है जो महाराज श्री का शुभ नाम है, वह संत राम है। आत्म नाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो। अपना नाम, गुरु का नाम और ज्येष्ठ पुत्र का नाम और अपने पत्नी का नाम और पत्नियों को भी अपने पति का नाम, यदि कल्याण की इच्छा हो तो लेना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, नाम लेना नहीं चाहिए मतलब बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में बार बार जब वो कहीं कहीं अपना नाम लिखते हैं तो वहां कहा कि संकल्पादौ न दोषः। यदि हम संकल्प करते हैं कि अमुक गुरु का मैं शिष्य हूं तो वहां गुरु की तेजस्विता का स्मरण करके और हमें वैसा बनना चाहिए, यह भाव है। इसलिए यदि संकल्प करते हैं शुभ संकल्प तो संकल्प में कहीं लेखन कार्य में दोष नहीं है, आदर पूर्वक, लेकिन वैसे बार बार उच्चारण करना यह दुरुपयोग, यह ठीक नहीं है, ऐसा स्मृतियों में टीकाकार लिख रहे हैं महाराज जी। हाँ, मर्यादा है, इसलिए मर्यादा के वशीभूत हो करके ही कार्य करना चाहिए। अपनी मर्यादा है, भगवान सूर्य की भी मर्यादा है, जो सारे भुवन को प्रकाशित करते हैं उनकी भी अपनी मर्यादा है कि वो हमारे यहाँ कितने घंटे तक रहेंगे। तो व्यास जी महाराज ने जब अपना आसन जमाया था कैलाश के शिखर पर, उस समय जो है स्कंद जी महाराज पहुंचते हैं, जो कार्तिकेय जी है, षडानन है, वह कह रहे हैं प्रभु ये जो रवि है ना, भगवान सूर्य आकाश में दिखाई देते हैं, ये कौन है, जरा इनके विषय में आप कुछ बतलाओ। कहा कि बेटा ये जो रवि है ना, इनका नाम आदित्य है और ये अदिति से उत्पन्न हुए हैं और इनके इनको लाल पुष्प बड़ा ही प्रिय है। लाल पुष्प प्रिय होने से जो मनुष्य इनको लाल पुष्प के साथ रक्त चंदन जल में लगा करके अर्घ देता है उससे ये अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे पुत्र धन धान्य कीर्ति दे देते हैं। कुंती माता ने तो यहां तक इच्छा किया, मन में संकल्प किया कि उनको कर्ण जैसा पुत्र दे दिया, जिसे कर्ण को कानीना कहते हैं। दो लोग कन्या स्थिति में अपने माता से उत्पन्न हुए, एक तो व्यास जी और दूसरे कर्ण, और दोनों ही अतुल तेजस्वी हुए, दोनों ने इतिहास में अपने नाम को अमर किया। यदि महाराज व्यास जी नहीं होते तो हम आज किन पुराणों की कथा कहते। यदि दानवीर कर्ण नहीं होते तो कर्ण हम ये नहीं कह सकते कि मित्रता में की यदि दुहाई दी जाती है तो कर्ण की दुहाई दी जाती है जो मित्र के लिए अपने प्राण को न्योछावर कर देता है, यह जान करके भी कि यह मेरी माता है, लेकिन माता ने यदि तिरस्कार किया तो भी मित्र का साथ ही दे रहे हैं, यह उनकी एक कृतज्ञता है। जो कर्ण जैसा दानवीर, यह सूर्य आराधना का ही फल है, यह सूर्य की तेजस्विता का ही फल है, क्योंकि मानी नहीं सम्मानित होते अपना नाम बताकर। जो सम्माननीय लोग होते हैं अपने पिता और दादा का नाम बतलाकर सम्मानित नहीं होते हैं, वो तो वीर खींच कर रह जाते हैं इतिहासों में लीक। जो वीर पुरुष होते हैं, जो सूर्य होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं, उन्हें अपने परिचय देने की जरूरत नहीं है। तो सूर्य के परिचय की बात आप कर रहे हो, जो ऋतु करता है, जो ऋतुएं बदलती है, छह ऋतुएं, ऋतुकर्ता प्रभा करह, प्रातः काल लेकर के भगवान भास्कर आते हैं, तब पक्षी घोंसले से अपने निकल के, घोंसला मतलब समझते हैं ना, माड़ा, उससे निकल करके और चहचहाते हुए बाहर आ जाते हैं, तब नया प्रभात होता है। इसलिए यदि सूर्य की कृपा प्राप्त करनी हो तो हमें रात को हविष्यवान भोजन करना चाहिए, मतलब घी अथवा तेल घी का भोजन करना चाहिए, दिन भर उपवास करना चाहिए, रात को दूध दूध के साथ रोटी ले सकते हैं। जो ऐसा व्यक्ति जो पूरे दिन व्रत रहता है और एक समय सूर्यास्त से पहले दुग्ध और रोटी अथवा दुग्ध अथवा पौवा जो खाए, नमक वाला भोजन न करे, तो वह यदि ऐसा 12 वर्षों तक करता है तो स्वर्ग से कभी भ्रष्ट नहीं होगा। मतलब सूर्य की इतनी क्षमता है, लेकिन उसमें व्रत में पवित्रता की जरूरत है। रविवार को कम से कम सत्य बोले, और यदि संक्रांति के दिन सप्तमी तिथि हो तो भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय होती है। क्योंकि सप्तमी क्यों कहा, तो कहा कि भगवान सूर्य के सात रथ है, सात घोड़े हैं। वह घोड़े क्या हैं? तो उनका नाम जो भी हो, लेकिन जो सात वार है ना, वो उनके घोड़े हैं जो चलते रहते हैं। काल का मापक हमारे यहाँ सूर्य है, तो जो सप्तवारा प्रकृतिता है ना, उनका वार आता है। तो कहते हैं मेरा वारा, तेरा वारा, उसका वारा, तो रविवार से शुरू होकर के शनिवार को जाके मंद पड़ जाता है। शनिवार का नाम है मंदवार, और फिर रविवार से वारों का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए रविवार की जो छुट्टी है ना, वह उपासना के लिए है, बाहर घूम करके मौज मस्ती के लिए नहीं है। रविवार यदि आप व्रत करते हो तो रविवार की जो आपकी ऊर्जा है वह सात छह छह दिन आपके लिए काम में आएगी। इसलिए जब आप बाहर थकते, बाहर आप काम करते हो, इसलिए रविवार के दिन आप आराम का दिन रखो, लेकिन उसमें उपवास रख करके भगवान सूर्य की उष्मा रश्मि का जो है आराधन करो, और अपने आप को बलवान बनाओ, सूर्य जैसा तेजस्वी बनाओ। इसलिए अवकाश का दिन है, खाली काम से अवकाश नहीं है, शरीर के इंद्रियों का भी थोड़ा अवकाश दीजिए, जिससे कि शरीर में ऊर्जा संचित हो। मशीन रुकती है तो थोड़ा आराम हो जाती है, जलती नहीं है, तो इस मशीन को थोड़ा आराम देंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ का मतलब ही होता है स्वस्मिन तिष्ठति ति स्वस्थः, जो अपने आप में है, जिसके कल पुर्जे शरीर के अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मन हमारा अपने आप में है, हम कहाँ हैं, कौन है, हमें क्या करना है, यह विचार करके कार्य करो। पूरे सात दिन का आयोजन आप जब उपवास रहोगे तो चिंतन करोगे मन से, तो वो पूरा हो जाएगा। और भगवान सूर्य ग्रहों के अधिष्ठाता हैं, ग्रहों के स्वामी है, इसलिए कहा कि लाल फूल से उनको तो अर्घ देना ही चाहिए। एक मंत्र है जिसको हम सूर्य गायत्री कहते हैं, आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करना चाहिए रविवार को, यथाशक्ति बन सके उतना करना चाहिए। केले इत्यादि का फल ब्राह्मण को दान करने का विधान बतलाया है, इससे भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। यद्यपि सूर्य एक ही है, लेकिन उन सूर्य के चलते 12 मासों में अलग अलग उनका नाम है। 12 मासों के सूर्य अलग हैं, अलग अलग नामों से वह कार्य करते हैं और सबको सुख और शांति प्रदान करने वाले आदित्य देव ही है। उसमें द्वादश नाम बतलाया है कि पूजन करके गंध अक्षत फूल धूप दीप और नैवेद्य दक्षिणा अर्पण करके भगवान को और प्रार्थना करना चाहिए, नमः सहस्र बाहवे आदित्याय नमो नमः, नमस्ते पद्महस्ताय वरुणाय नमो नमः। जल स्वरूप है भगवान सूर्य, क्योंकि जितना जल है धरती का वह भगवान आकर्षण करते हैं। नमस्ते मीरनाशाय सूर्याय नमो नमः, भगवान जैसे वसुंधरा धरती के अंधकार को दूर करते हैं, वैसे हमारे बुद्धि के भी अंधकार को आप दूर करो। उनका नाम है सहस्र बाहु। बाहु शब्द कहा रश्मियों के लिए, जो भगवान सूर्य की किरणें हैं वह हजार नहीं वो अनंत किरणें हैं, लेकिन अपने यहाँ संस्कृत साहित्य में एक उपलक्षण होता है। उपलक्षण क्या कहते हैं कि थोड़ा कहा जाए तो अधिक समझना उसके उपकारक जितने हो। जैसे किसी ने कहा कि ये दही को बचाना कौवे कहीं आके खा न जाए, तो देखने वाला बैठा था, कौवे को देख रहा था आसमान से कहीं आए नहीं, तब तक बिल्ली आकर खा गई। गुरु ने पूछा, भाई दही रक्षा किया? कहा हाँ, कोई कौवा नहीं आया था। तो कहा कि तो दही गई कहाँ? तो ये पता नहीं, आपने कहा था कौवे से रक्षा करने के लिए, तो बिल्ली खा गई। अभिप्राय उनका यह है कि दधि की रक्षा करना, चाहे कोई भी प्राणी हो, संसार के सभी प्राणियों का नाम गिना है कि इससे रक्षा करना इससे रक्षा करना, दधि रक्षण में तात्पर्य है। उसी तरह सहस्र मतलब अनंत अनंत रश्मियों का यह प्रतीक है। यह संस्कृत साहित्य का अपना कोड वर्ड है, विलक्षणता है। यह जो संस्कृत का विद्वान होता है वह जानता है जो परंपरा से पढ़ता है, इसलिए परंपरा से शास्त्र पढ़ने की परंपरा है। जो इसको नहीं समझ पाता है वह उसका उल्टा सुल्टा अर्थ लगाता है। जैसे एक पिता पुत्र की चर्चा हो रही थी सभा में, पिता ने कोड वर्ड में कहा, पिता चर्चा कर रहे थे कुछ अतिथियों के साथ, बेटा आया बोला धानुपुर से मारू आए, कटवतिया घाट पे बैठे, जल्दी जा करके मिल लो नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। कोई नहीं समझा, पिता समझ गए तो कहा ये धानुपुर क्या होता है? बतलाया कि धानुपुर मतलब जो धान होता है ना, धान जिसको डांगर कहते हैं, वो जब डांगर को आप पकाओगे चावल को, डांगर का चावल नया जो आता है ना, वो मिठास लिए होता है। जब आप उसको धोकर के पकाओगे तो उसमें से निकल के बाहर आता है ना, जिसको आप पसाते हो मांड बोलते हैं, मांड हमारे यहाँ कहा जाता है यूपी में, तो कहते मारू आए हैं, मतलब उससे मंड निकल आया है। हाँ वो सामण कहते हैं, आप सामण जो होता हो वो सामण। और कठवतिया घाट पे बैठे हैं, वो कठवत कहते हैं जो तपेलिया जैसा होता है ना, उसमें उन्होंने पसा करके रखा है, तो कठवतिया घाट पे बैठे हैं। घाट उस जगह को कहते हैं जहां लोग स्थिर होते हैं। और जल्दी जाकर मिल लीजिए, अब मिलने का मतलब उनके साथ उनका संबंध होगा तो वो समझ गए, ये नहीं करेंगे खा लीजिए कहेंगे तो वो समझ जाएंगे, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे मतलब ठंडा हो जाएगा। अब ये जो कोल्ड वर्ड है यह पिता और पुत्र ही समझ रहे हैं, दूसरे तो